राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम।
श्रीमद् पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण 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 नारायण।
श्रीमद् भगवद गीता में आया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये आधा श्लोक है। इसकी थोड़ी व्याख्या गाड़ी है। मा कर्म फल हेतु भूत माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान ने सांख्ययोग का विवेचन किया, फिर क्षात्र धर्म के लिए कहते हुए क्या युद्ध करना कर्तव्य है, फिर कहा सांख्ययोग की बात सुना दी, अब कर्मयोग की बात सुन। सांख्ययोग की बात तो है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत आधा, और कर्मयोग है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन याचा। दूसरा इसका विवेचन है, व्याख्या है, परंतु सार चीज ये है। तो हरेक भाई बहनों के लिए जो गृहस्थ में रहते हैं, विशेष गृहस्थ में रहने वालों के लिए कर्मयोग है। भागवत एकादश स्कंध में जो 20वां अध्याय आता है उसमें योगास्त्रयोमय प्रोक्ता लिखा है। मैंने योग 3 कहे हैं, वो तीनों का कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 योगों का उसमें वर्णन है 20वें अध्याय में। उसमें बताया कि जो अत्यंत विरक्त है किसी पदार्थ और किसी क्रिया में जिसकी आसक्ति नहीं है, राग मिट गया है व्यक्तियों से वस्तुओं से, ऐसे अत्यंत विरक्त है उनके लिए तो है ज्ञान योग। वो जो संसार में आसक्त है, राग है, वे है कर्मयोग के अधिकारी, उनके लिए है कर्मयोग। और न अत्यंत आसक्त है नहीं विरक्त है, ऐसे बीच के जो लोग हैं, विरक्ति भी होती है आसक्ति भी होती है, दोनों बातें आती है। कभी सत्संग भजन ध्यान में रुचि होती है, कभी पदार्थों में रुपया में कुटुंब में रुचि होती है, ऐसे योग है वो है भक्ति योग के अधिकारी। नातिशक्तो न निर्वर्णो भक्ति योग से सिद्धिदा। तो कर्मियों कर्म में रह करने वाले जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ये श्लोक बहुत बढ़िया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आधा श्लोक भाई बहन ध्यान देकर के सुने। जो कोई अच्छी बात आ जाए वो भगवान की गीता की समझनी चाहिए। त्रुटियां मेरी है उनको माफ कर देना, क्षमा कर देना, पूछना हो तो वो गलतियों के विषय में भी आप पूछ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, अभी नहीं लिख लो फिर पूछ लेना। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन का अर्थ क्या हुआ कि आपके सामने जो जो कर्तव्य कर्म आता है उस कर्तव्य कर्म में ऊपर आपका अधिकार है, तत्परता से उत्साह से करो, उसमें आपका अधिकार नहीं है। मानो उनको चाहना ये आपका कर्तव्य नहीं है, अधिकार की इच्छा न रखना और कर्तव्य कर्म करना। कर्मणि एव अधिकार है, कर्मणि एव, कर्म करने में ही अधिकार है। फल में अधिकार मत लगाना, फल पर हक नहीं लगाना, ये खास बात। आगे कहते हैं माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी तुम मत बनो। हेतु बनना क्या है कि मैंने ऐसा किया है तो इसका तो ऐसा नतीजा होना चाहिए, ऐसा भीतर भाव भी नहीं रहना चाहिए, हेतु भी मत बनो। आपने अच्छा काम किया, संसार में कोई आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ तो नाराज हो जाते हो, तो ये क्या है, ये फल में आ सकती है। तो अधिकार अपना फल पर लग रहा, फल पर अधिकार न रख कर दे। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी अधिकार नहीं, उसमें स्वतंत्रता नहीं, उसको चाहना ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। तो ये सबके लिए बड़ी चीज, बढ़िया है। और विचार कर देखे तो आजकल प्रायः लोगों में ऐसी बात है, जो सत्संग सुनते हैं, साधन करते हैं, जप ध्यान कीर्तन आदि करते हैं, इसमें लगे हुए हैं, उनकी यही दशा है, अत्यंत आसक्ति भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। तो कर्मयोग के सब अधिकारी हैं, ये बीच का रास्ता है, बीच की अवस्था है, ये बीच की अवस्था वाले सब अधिकारी। तो उनको घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए काम करना है। भगवत गीता कोई साधु सन्यासी हो जाए, त्याग कर चला जाए, उसके लिए वो ऐसी बात नहीं है। गीता वास्तव में है, लोग कहते हैं गीता पढ़े तो साधु बाबा हो जाएगा, तो साधु बाबा ग्रंथ ही नहीं है, ग्रंथ गृहस्थ का ही है। कहने वाले भी गृहस्थ थे कृष्ण भगवान, और सुनने वाले अर्जुन भी गृहस्थ थे। भगवान तो बहुत बड़े गृहस्थ थे, 16,108 स्त्रियां थी, कितने बड़े गृहस्थ थे, अर्जुन के भी कई थे। इस वास्ते बड़े गृहस्थ थे, तो गृहस्थ के ही उपदेश के लिए गीता का विवेचन हुआ है। सन्यासियों के लिए एक श्लोक दिखता है, 700 श्लोकों में एक श्लोक मालूम होता है सन्यासियों का, निराशीर दत्त आत्मा तक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किं विषम एव। और कई जगह ऐसा अनुमोदन आता है, विवेचन आता है। टीकाकारों ने तो कई श्लोक लिखे हैं सांख्य योग के विषय में, तो सांख्य योग के विषय में तो हम भी मानते हैं, परंतु संन्यास का आग्रह नहीं कि साधु हो जाए तब सांख्य योग का अनुष्ठान करे। सांख्य योग की बात तो दो लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा भगवान ने कही है, तो सांख्य निष्ठा योग निष्ठा है, परंतु साधु होने का आग्रह नहीं है। आग्रह नहीं थी बात नहीं है, अर्जुन तो सब छोड़ करके साधु ही होना चाहता था, उसको गृहस्थ में रख करके युद्ध करवाया भगवान ने। अर्जुन ने तो साफ कह दिया, श्रेयो भोगतुम भैक्षिम अपनी लोके भिक्षा कारण खाना मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, श्रेयान का श्रेयान बहुत श्रेष्ठ समझता हूँ। उस नजर सेवन उपश्यामी हतवा सदन महावे युद्ध में कुटुम्ब जनों को जनों को मार करके मैं श्रेय नहीं देखता हूं, भीख मांग कर करने में श्रेय देखता हूं। तो इससे मालूम होता है उसे मन संन्यास आश्रम की तरफ छोड़ दू। सभी भगवान ने उसको बताया कि नहीं, श्रेष्ठ क्या है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुनिष्ठता। पर धर्म जो है संन्यास का मांग कर खाना, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये पर धर्म है। और युद्ध करना ये स्वधर्म है। तो विगुणों भी स्वधर्म श्रेयान, गुण रहित भी गुण कमी है वो भी अपना धर्म बहुत श्रेष्ठ है। और पर धर्म अच्छी तरह से अनुष्ठान करें तो भी वो भयावह है, भय देने वाला है। अब जो धर्म पे पालन करते मर जाए तो भी कल्याण है, और दूसरे का धर्म पालन करते हो जैसे गृहस्थाश्रम में है, मांग कर नहीं खाना, क्षत्रिय के लिए मांग कर नहीं खाना क्षत्रिय के लिए निषेध है, तो वो पर धर्म है, वो मांग कर खाना ठीक नहीं है, भय देने वाला है, उसका नतीजा भय निकलेगा। अगर इस वास्ते श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म पालन करने का श्रेष्ठ है, और उसमें मर जाए तो श्रेष्ठ है, और उसमें जीता रहे आराम के तो श्रेष्ठ नहीं है क्षत्रिय के लिए। इसमें भी कोई विरक्त होते हैं, त्यागी होते हैं क्षत्रिय होने पर भी, वो अगर संन्यास ले तो कोई गीता निषेध नहीं करती है, परंतु गीता अपने धर्म के पालन के ऊपर बहुत जोर देती है जो उनका धर्म है। स्वधर्म क्या है, तो क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्त क्षात्र कर्म स्वभावजम, ये सात धर्म बताए हैं क्षत्रिय के लिए। तो क्षत्रिय के लिए युद्धे चाप्य पलायनम, ये आता है एक धर्म सात धर्मों में। युद्ध में पीठ न दिखाना, युद्ध में भाग जाना, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। भगवान श्री राम धनुष भंग के समय में बोलते हैं कि क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक ते ही पामर जाना। क्षत्रिय जाति में जन्म लेकर के युद्ध में संकोच करता है तो कुल कलंक है और पामर है। इस वास्ते रघुनाथ जी महाराज कहते हैं लड़ई सुखे न काल साक्षात मृत्यु काल भी सामने आ जाए, सुखेल लड़ाई सुखपूर्ण लड़ेंगे अच्छी तरह से, इनमें मरने की भय की बात ही नहीं है। जैसे ब्राह्मण के लिए वेदों का अनुष्ठान कर्तव्य होता है, ऐसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना अनुष्ठान है, कर्तव्य कर्म का वेदों का अनुष्ठान है, वेद धर्म का। तो इससे सिद्ध हुआ कि अपना धर्म है वो श्रेष्ठ है दूसरे धर्म की ओर। अपने धर्म के पालन करने में क्या करना चाहिए, कर्मणि ये अधिकार है, अपने धर्म का पालन करना है। मां फलेश वदन, फलों में नहीं, फल की इच्छा नहीं रखना। इस वास्ते मां कर्म फल हेतु रूप, कर्म के फल का हेतु भी मत बन। मानो कर्तव्य मैंने किया है ये भी अभिमान मत रख, क्योंकि इससे भी ये होता है कर्म मैंने किया तो फल मेरे को ही मिलना चाहिए, तो ये मैंने कर्म किया ये अभिमान रखना भी कर्म के फल का हेतु बनता है, तो हेतु भी मत बनो। तो किसी कर्म करो और फल के हेतु भी मत बनो, तो कर्म न करें ना ना माते संगोष तो अकर्मणी, अकर्मण्यता में आसक्ति कभी मत करना, कर्तव्य कर्म से विमुख कभी नहीं होना, और फल किंचित मात्र भी न चाहना। ये दो बातें विशेषता से कह दी, जो पूर्वार्ध बात कही उनके ही बात इतनी है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते महाफल कदाचन। अब गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात है, अपना जो कर्तव्य पालन करो। जैसे माताएं हैं तो उनको चाहे भी माता का क्या कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य पालन करो बेटा बेटी के लिए, और ये बेटा मेरी सेवा करेगा ऐसी इच्छा मत रखो। और पाल करके बड़ा किया, सब तरह से पालन किया, पढ़ाया, योग्य बनाया, ब्याह कर दिया, बहू आ गई और वे अलग होना चाहे तो उचित उनका पांती दे करके भर भगा, अब बना बने जाओ, अगर कोई इच्छा नहीं है मौज करो, हमारा हमने काम कर दिया, अब वे करे न करे उनकी जाने, अपने तो काम कर दिया, तो उसे नाराज नहीं होना। ये मैं विश्वास तो कहता हूं कि माताओं के बहू की इच्छा बड़ी रहती है, मेरी बहू आ जाए, बेटा पैदा होता तब से इच्छा होती है कि बड़ा होगा इसको ब्याहूंगी पढ़नाऊंगी, मेरी बहू आ जाएगी और हुक्म चलाऊंगी, वो मैना कहना करेगी, ये वासना रहती है भीतर। माताओं ये मत रखो, करे तो बड़ी अच्छा, उसका निषेध भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, पर नहीं करे तो इच्छा रखनी ही नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम तो अलग होंगे, बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया बात है, अपने पैरों खड़ा हो जाना बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। एक बात याद आ गई, लड़कों का ब्याह होता है तो कई गृहस्थ ब्याह होने पर उन लड़का लड़की को मेरे पास लाते हैं, चलो बाबा जी को नमस्कार करो, हम वो उनसे बाबा जी ऐसे नहीं है परंतु उनको उनकी जो भावना जो कोई कोई आ जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप राजी होते हो ब्याह हो गया, ये राजी नहीं है, ये बड़ी जिम्मेवारी आई है, उसका पालन करो, अब जिम्मेवारी आधा अधिक आ गई, जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक थोड़ी थी जिम्मेवारी माँ बाप की सेवा करना, अब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करना जिम्मेवारी विशेष, और इतना ही नहीं घर मात्र का भार तुम्हारे पर है, माँ बाप का भी तुम्हारा तुम्हारे पर है, माँ बाप का भी तुम्हारे पर भार आ गया है। उस समय एक कहानी कहा करता हूँ, आज के बीच में याद आ गई बात हो कहता हूँ, एक कहानी कहता हूँ। एक सेठ थे, वो शांत हो गए, लड़का छोटा था तो माँ ने उसका पालन किया, 14-15-16 वर्षों का हो गया, उसका ब्याह कर दिया, ब्याह करने पर भी वो विशेष काम नहीं करता है और घर में कोई कमी नहीं है, सब तरह से अच्छी बात है, तो वो माँ क्या कहती है, रसोई भोजन बना करके और परोसती है तो बेटा ठंडी रोटी खा लो। वो लड़का समझता नहीं, माँ गर्मा गर्म बनाकर देती है और कि बेटा ठंडी रोटी खा लो, ये क्या कहती है समझे नहीं। एक दिन कोई काम हो गया तो कि मंदिर चली गई दर्शनों के लिए, भगत हो गया भोजन का, छोरा आया नहीं तो अपनी बहू को कह दिया कि बिंदनी छोरा आवे तो उसको रोटी परोस देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। वो आया सब, अब रोटी परोसी बनाई, रसोई बना के दी कि लोग ठंडी रोटी खा लो। वो तेज हो गया, ठंडी रोटी कैसे कहती है, गरम गरम अभी बनाई है, अभी तक ठंडी कैसे हुई, साग में तो हाथ जलता है, ऐसा गर्म गर्म साग है, ठंडी रोटी खा लो, बोल कैसे ठंडी कैसे बता। वैसा ये मैं जानती नहीं, तुम्हारी माता जी कह गई थी कि छोरे को परोस करके और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, नहीं खाऊंगा। माँ तो कह दी, कहती ये भी सीख गई, कहते ठंडी रोटी खा लो, कोई बात नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाई रोटी। जब माँ आ गई तो पूछा कि बीन ने छोरा जीम लिया, भोजन कर लिया, माँ जी वो तो नाराज हो गए, क्यों तो आप कहा कि ठंडी रोटी खा लो, मैंने कह दिया, पूछा ठंडी कैसे है, अब मैं क्या कहूँ, मैं रोटी गर्म सच्ची बात है, ठंडी रोटी कैसे कहूँ, तू तो नाराज हो गए, तो बुलाया, क्या बात है कि माँ तू तो कहती कहती है, ये भी कहने लग गई लो ठंडी रोटी खा लो। कोई बात है कैसे ठंडी रोटी खा ले, झूठ बोले, गर्मा गर्म रोटी कैसे ठंडी रोटी खा लो। तो माँ पूछो बेटा गर्म रोटी किसको कहते हैं, ठंडी रोटी किसको कहते हैं? जो कल परसों की बनाई हुई हो जाए वो ठंडी, सुबह की बनाई शाम को ठंडी, शाम को बनाई सुबह ठंडी होती है, और ताजी रोटी होती है जो बनाकर तत्काल खाए वो ताजी गर्मा गर्म रोटी होती है। तो गर्मा गर्म ताजी होती है ना, हाँ, और पुरानी हो जाए तो वो ठंडी हो जाती है। तो तू ठंडी रोटी खाता है ताजी? ताजी देती है माँ मेरे को, मैं देती रोटी, ताजी रोटी खाती हूँ। बेटा ताजी रोटी नहीं है, जब तक बाप की कमाई खावे तब तक ठंडी रोटी है। गर्म रोटी तो खुद लगा कमा लावे तब गर्मा गर्म रोटी होती है। तो बात तो ठीक है, आ तो पुरानी रोटी है ना, आ तो पुरानी रोटी है, पुरानी ठंडी होती है। फिर माताएं शिक्षा देती थी बड़े ढंग से, उसकी लग गई। जब माँ कहूँ गर्म कहते रोटी तो खा ले, फिर गर्म खाना भोजन कर ले, बुरा मत मान। तो वो कमाने लग गया, फिर कमा के लाया, उसका खरीद कर लेगा, माँ मैं रोटी गर्म बना दे अभी। तो ये कहा करता हूँ, जो ब्याह करके छोरा छोरी आते हैं तो भाई अब याद रखना गर्म रोटी खाना, अब ठंडी रोटी बाप की कमाई खाओ बैठे, ऐसा ठीक नहीं है। उसमें राम जी का उदाहरण देता हूँ, भगवान राम जी ने ब्याह किया तो फिर वनवास हो गया, और वनवास में फिर वो रावण ले गया सीता जी को, तो भरत जी को समाचार नहीं किया कि वे मेरी स्त्री को रावण ले गया तुम छुड़ाओ, नहीं किया, क्योंकि ब्याह किया है तो स्त्री का पालन करना, बच्चों का पालन करना अपने पर निर्भर है, भाई और माँ बाप पर नहीं है। तो कोई समाचार किसी रामायण में मैंने नहीं देखा कि भरत जी को पता ही लगा हो। हनुमान जी से जब पता लगा, वो बाण लगा संजीवनी लाए, तब पता लगा कि तू दो रहा है लक्ष्मण जी को मूर्छा होगी, तब पता लगा। कोई वो डाक थी कोई आना समाचार कुछ था ही नहीं। तो फिर भरत जी महाराज ने राजाओं को इकट्ठे किए, फौज बनाई के रावण पर सराय करना है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में आता है। पर राम जी ने नहीं कहा, तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने सुग्रीव की सहायता करी, सुग्रीव की स्त्री भी चली गई, राज भी चला गया, कुछ भी रहा नहीं पास में, तो उसको सब दिला दिया। सहायता भी सुग्रीव से लेनी है तो सुग्रीव की सहायता करके सहायता लेनी है, मुफ्त में किसी से लेनी नहीं है सहायता, ये उनके चरित्र से सिद्ध होता है। तो उसी सुग्रीव को क्या किया कि सब कुछ डाल दिया। अब सुग्रीव है वो ऐसा निकला कि चातुर्मास में चार महीने प्रवर्षण गिरी पर भगवान राम विराजमान है, किसी दिन मिलने के लिए नहीं गया। तो भगवान ने कहा वो सुग्रीव सुधि मोरी बिचारी, अरे सुग्रीव ने मैं मेरी सुधि बिचार थी, सुग्रीव हूँ सुग्रीव ने भी मोरी बिचारी, पावा राज कोश पुर नारी, चार सिद्धराई बने, राज्य लिया पुर और खजाना और स्त्री, पावा राज्य और कोश खजाना पूरी ये धरा दिया, वही मेरे विचार धरा है। तो फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी कहे महाराज नहीं गए, जिन बाण से बाली को मारा कल उसी बाण से मार दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज ये आपको तकलीफ नहीं देखनी पड़े, अरदास कर देगा काम सब ठीक हो जाएगा, तेरा नाना मारना नहीं, तात सखा सुग्रीव मित्र है मारना नहीं, भय दिखा रहा है लाए हो तात सखा लो भय दिखा कर जाना मारना नहीं। तो पहली सहायता उसी कर दी, पावा राज्य कोष पुर नारी चारों पुलिस मिल गई, तब उनको तो चार दिलाई और इनके लिए एक स्त्री, इतना उपकार 100 गुना किया, 1 गुना बदले में उपकार उसे लिया, तो यह तो कमाई बुझो कि कमाई है, ये ठंडी रोटी नहीं है। समझिए, तो अपने स्त्री बच्चों का पालन करने के लिए बाप की कमाई का भरोसा रखो, ये गलती है। ना बाप की कमाई का, ना कोई ब्याज का, ना कोई मकान का, किसी का भी नहीं। ब्याह करो तो अपने बल, छाते के बल पर बोकिया बल का करो, ठीक है, अपने बच्चों का पालन करो। बाप की संपत्ति लेने में जन्म सिद्ध अधिकार, परंतु अपनी हिम्मत ऐसी नहीं रखनी उसके भरोसे। तो ये बात आ कि कर्म अपने अधिकार कर्म में, फल में नहीं। पिता की संपत्ति है, पिता का घर है, गद्दी है, उसको ठीक तरह से रखना है, परंतु भीतर में वो ममता बना नहीं है कि पिता की सहायता से काम करे। मान गया बेटा ठंडी रोटी खा, ठंडी रोटी है तो ठंडी रोटी नहीं खानी है। तो इस तरह से कर्म एव अधिकार हस्ते माँ फलेशु, फल भी नहीं। कर्तव्य कर्म करो, धन मिले तो मोज, न मिले तो मोज, व्यापार में नफा हो जाए तो मोज, नुकसान हो जाए तो ही मोज। नहीं करना चाहिए, जो नुकसान सह सके इतना व्यापार करना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं। जब पूंजी बढ़ जाए तो ज्यादा बढ़ाओ, फिर बढ़ जाए तो ज्यादा बढ़ाओ, ऐसे व्यापार करना चाहिए। तो माँ फलेशु कदाचन, फल में कभी नहीं। इस वाले फल कर्म के फल का हेतु भी मत बनो। यही बात बहनों माताओं के लिए है कि आप घर में काम धंधा करो, दूसरों काम पड़े तो उनका भी काम धंधा करो, परंतु फल की चाहना भीतर से छोड़ दो। इनके भीतर की चाहना रहती है, कैसे कि किसी के लड़की का ब्याह है और आप प्रेम रखती हो, कुटुंब में हो, तो आपको कह दे कि आओ भाई हमारे काम धंधा है, छोरी का ब्याह करना है, हमारी छोरी तुम्हारी छोरी है, इस वास्ते काम करो। तो वे काम करती है, काम में वाह वाह करे तब तो हो जाए राजी, और बाबा नहीं तो नाराजी हो जाए। खटकर काम करे, परिश्रम करे कि कोई गुण नहीं है, कुछ गुण को नहीं, इस तो मैं काम करो तो कोई गुण को नहीं, तो गुण क्या हुआ, वाह वाह कह दे कर करे तब तो गुण हो गया, और कुछ नहीं गुण को नहीं, तो क्या है, ये फलेच्छा है। फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति रखने वाला बंध जाता है। तो बहनों माताओं से कहना है, आप उपकार करो मगर बदला मत चाहो। बदला में वे आदर करे, सत्कार करे, आपका काम करे, ऐसी इच्छा मत रखो। सेवा करे तो कोई बहु है, सेवा देवरानी है तो सेवा कर दे, कोई हजूरी बेटी भी सेवा कर दे, पर आशा मत रखो। ये भाई लोगों से कहना है, आप ब्याह करके लाए हो तो स्त्री का भरण पोषण करना, कपड़ा है, रहने की जगह है, और चीज उसकी सब तरह से सुविधा करो, और रोटी भी बनाकर ना दे तो प्रसन्न रहो, कोई बात नहीं, हमने कोई कमी नहीं रखी। अपने कर्तव्य में कमी किंचित मात्र मत रखो। इसका वो ऐसा मानेगी न मानेगी कोई अर्जुन नहीं, तेरी मर्जी भाई, रोटी मैं बना लू, तुम भी बदल कर मैं भी कर लूंगा, ऐसे रोटी बना दो आप अच्छी तरह से, काम धंधा अपने करो, वो करती हो तो करो, अच्छी बात है। वो अगर नाराज हो जाए तो आप रसोई क्यों बनाओ, तो तुम बनाओ, हम कोई मना नहीं है, तुम बनाओ अच्छी तरह से, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, परंतु भीतर में आशा नहीं रखनी कि ये काम करेंगे। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा रखना है ये परम दुख है, दुख ही नहीं महान दुख है, और आशा न रखे अपने काम करो अच्छी तरह से, ये परम सुख है, मामूली सुख नहीं, बड़ा भारी सुख है। इस वास्ते स्त्री से, बच्चों से, बेटों से आशा नहीं रखना। अब इसने भी नहीं रखना है तो कुटुंब से क्या आशा रखें, मोहल्ले से क्या रखें, संसार से, शहर से क्या रखें, दुनिया से क्या रखें, अपना काम ठीक तरह से करना, स्थिर से वे माने न माने, जाने न माने, कुछ परवाह नहीं, अपना काम ठीक तरह से करना, यह है कर्म योग। तो कर्म कर्तव्य कर्म में अधिकार, फल में अधिकार नहीं, अपना फल की इच्छा नहीं रखना, अधिकार जमाना नहीं। अधिकार तो होता है, जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है, नौकरी करे तो उसको ये तनख्वाह मिलेगी, ऐसे खेती करेगा तो उसको अनाज मिलेगा। परंतु अनाज में दोष नहीं है, नौकरी करने में अगर पैसे मिलते हो तो पैसों के साथ द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष है भीतर में चाहना के साथ, काम कर दिया वो दे तो मौज की बात, ना दे तो कोई बात परवाह नहीं। ब्याह हुआ बुलाई आपको तो ठीक है, थोड़ी का ब्याह हुआ काम किया ठीक तरह से, तो उसमें भी ख्याल रखना, स्वार्थ के त्याग का ख्याल रखना। छोरा छोरी आ जाए तो उनको भी भोजन करा दो, आ जाओ छोरा आ जाओ खा ले, घी घाल दिया चीनी घाल दी खा ले, प्यार काम है। अरे ब्याह का काम है तो तुम्हारा थोड़े अधिकार लगता है, तो अपने छोरा छोरी को जी मार दिया इसी तरह से, ये तो ठीक नहीं हुई। भोजन भी अपने घरदार करे इतनी बढ़िया है, ये बड़े काम करेंगे तो फल क्यों चाहे हम, वे नाराज हो तो रोटी खा लो तो साधारण साग रोटी अपनी खा ले, ऐसा नहीं ब्याह और घर जो माल खा लो, ये भीतर में भाव बिल्कुल नहीं चाहिए। वे कह दे तो खा लो कोई बात नहीं उनकी राजी के लिए, मन भीतर में भाव किंचित मात्र भी नहीं। ऐसा बर्ताव करो सबके साथ में, सेवा करो सबकी, आप देवरानी हो तो वहां सासू की भी सेवा करो, जेठानी की करो, सेठानी की, जेठानी के बाल बच्चों की सेवा करो, सासू के बाल बच्चों की भी सेवा करो खूब अच्छी तरह से, परंतु आदर भी मत चाहो, प्रशंसा भी मत चाहो, बाल बच्चों की भी सेवा करो खूब अच्छी तरह से, परंतु आदर भी मत चाहो, प्रशंसा भी मत चाहो। प्रशंसा नहीं चाहे तो फिर क्यों करें, तो तुम्हारा प्रशंसा में बिक्री हो जाएगी। सेवा कुछ भी ले लोगे राजी हो गया ना, वो सेवा में से कट जाएगा, जैसे कोई चीज जमा करे जिसमें जितना ले ले खर्च उतना कट जाएगा। इस वास्ते अपनी तो सेवा पूरी की पूरी है, जो कि जो रह जाए इस वास्ते काम तो करो। भीतर से लेने की इच्छा ही भीतर से नहीं, लेना ही पड़े तो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए लेना है, ये लेना भी देना ही है। अपनी इच्छा रखते हुए नहीं दे तो भी लेना हो गया, और अपनी इच्छा नहीं है तो लेना भी नहीं लेना हो गया। अपने कोई नहीं दे कोई बात नहीं, वो रसोई भी नहीं पूछे, रोटी भी नहीं पूछे, कोई याद नहीं, अपने घर खा लेंगे जाकर, रोटी घर में खा जाओ फिर आ जाओ काम धंधा करने के लिए। इस तरह से काम करो धन सुधरेगा। बहनों माताओं को चाहिए आपस में हरेक का काम करो, बहू है तो सास का, जेठानी का, देरानी का, नंदों का, सब काम करो। सास है दादस है, बढ़िया है, बड़ी सासू है, काकी सासू है, जू सासू है, बढ़िया है, सब काम है, उत्साह काम करो ठीक तरह से। माता सीता जी को याद कर लिया करो, बहनों माताओं को चाहिए कि सीता जी को याद कर दे। शेष जी श्री जयदयाल जी कहते थे, मैं कोई काम करता तो भगवान राम जी को याद करता, कि मेरी जगह राम जी हो तो कैसे करे। उन खुद कही हुई बात है, अनुष्ठान किया उन्होंने, राम जी हो तो कैसे करते, वैसी मन में पाते कोई काम करता मैं, और राम जी की तरफ दृष्टि रखता मन से, कोई दर्शन नहीं होते थे पर मन से रखता, मन से राम जी राजी है तो ठीक है, राजी कम है तो सोचता भाई राम जी का राजी क्यों कम है आज, तो वे राजी रहे वो काम करो। तो भाई लोग तो भगवान राम जी को याद रखे, माता बहन सीता माता को याद रखे कि सीता माता कैसा बर्ताव करती है। पतिव्रता होती है उसको खुद को दुख दे तो उसको दुख नहीं होता, पति को दुख देता है कोई वो नहीं सहा जाता, वो बड़ा बुरा लगता है। परंतु सीता जी में क्या विलक्षणता है, बिना कसूर राम जी को वनवास दे दिया, मन सीता जी के कभी रेखा तक नहीं आई कि केकई का आदर कम करना है, ये कभी नहीं किया, सदा आदर गया। रामायण देख लो, अध्यात्म रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, पद्म पुराण में रामायण है, महाभारत में थोड़ी सी रामायण है, ऐसे कई ग्रंथों में रामायण की कथा आती है, परंतु सीता जी के मन में कोई विचार नहीं। भरत जी के मन में विचार आया कि ये क्या माँ है, तो वो माँ नहीं कहते थे, केकई को माँ नहीं कहते, महारानी साहब पधारो, महारानी साहब, महारानी साहब कहते, समझे? तो आप राजा की महारानी हो, महारानी साहब। केकई के मन में रहती कि ये भरत एक बार की माँ ऐसा कह दे तो माँ ही थी, तेरे को माँ कैसे कहूँ, अपने बेटे को बहु से जंगल में निकाल दे वो माँ होती है, ये माँ के लक्षण है, मैं माँ नहीं कहता, ऐसा रहते। इस बार गोस्वामी लिखा है जब तक जीती रही तब तक राम जी ने भरत जी ने माँ नहीं कहा, और राम जी कौशल्या से ज्यादा आदर करते थे, केकई का आदर ज्यादा करते थे। वनवास में गए चित्रकूट मिले तो माता केकई से पहले मिले, वनवास में आए तो सबसे पहले केकई माता के पैर हुए, तो उसमें कि माँ रोटी लो भोजन करो, तो वह माँ से भोजन मांगे। छोटेपन में जब रहते थे तो भरत के साथ स्नेह था, तो वहां केकई के वहीं रहते थे, भरत के साथ खेलते थे, केकई माँ वहीं भोजन करते है अपना, उनके माताओं में कोई फर्क नहीं, केकई माता जी वहां से, कौशल्या माता जी वहां कोई जीवन, इससे प्रेम रखते थे। भरत जी के मन में था कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, पर सीता माता तो नाराज हो गई होगा, पर सीता माता के मन में भरत के साथ में प्रेम था। जंगल में जब गए तो गांव की स्त्रियां है वो सीता जी के पास आ गई, उस राम जी के पास में, तो स्त्रियों के मन में पूछने की बहुत होती है, ज्यादा मन में होती है, इतनी पुरुषों में नहीं होती है, उनके मन में है, तो सगल पूछे ये दो है तुम्हारे कौन से है, पूछती है और बस क्षमा भी मांगती है, आप बिल्कुल जानो जान गंवारी, हमारे गंवारी जान करे, आप पूरा मत मांगना, को आज तुम्हारे तुम्हारे कौन है। बड़े संकोच हुआ, संकोच होने पर भी फिर बताया कि ये जो गोरे शरीर है और इनका नाम लखनलाल जी है, ये मेरे छोटे देवर हैं, देवर कहने से काम चल जाता, ये देवर इतने सही क्योंकि तुम्हारा तो वही थे, परंतु भरत जी की भूली नहीं होती है। सीता माता के लघु देवर बोले, नाम लखन लघु देवर बोले, नाम तो लखनलाल जी है, ये मेरे छोटे देवर है, तो बड़ा देवर बड़े देवर घर पर है, तो भरत जी की याद है ना, आदर है मन में भरत जी की याद है, लघु देवर बोले। फिर अंगुल करके अट्टे डिजिट देख करके से देखने लग गई, तो शैन से ही कहा ये पति है मेरे, तो इस तरह से भरत जी की याद है। कभी भी भरत जी के लिए मैंने पढ़ा है, थोड़ा ख्याल भी रखा है, लखनलाल जी तो नाराज हो जाते हैं, लखनलाल जी तो बहुत नाराज हो गए केकई पर, भरत पर, वो मुझे वनवास हुआ उस समय तो इतने तेज हो गए कि हम जो महाराज ये शस्त्र रखते हैं ना, ये श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार कूड़ा श्रृंगार किया नहीं है, ये किस दिन के लिए है, आपको राजगद्दी बैठाता हूँ, देखो कौन सुनाता है, दशरथ जी को क्या भी कर दूंगा और भरत को मैं देख लूंगा इसी तरह से, और भरत का मामा गद्दा है तो उसको भी देख लूंगा। बड़े तेज हो गए, राम जी कहे भाई क्या ये राज के लिए क्या करना है, हमें तो पिता का वचन मानना है, जंगल चलना, फिर जंगल में चले गए। तो लखनलाल जी के मन में तो तेजी आती थी और रही भी, और अंत तक यह है कि वनवास से आए तो भी मन का क्षोभ न जाए, मन मन का क्षोभ नहीं मिटता है लक्ष्मण जी का, पर माता सीता के मन में है ही नहीं, कितनी विशिष्ट विचित्र बात है, बिना कारण पति को जंगल में भेज दे फिर भी उसके प्रति दुर्भाव न हो, तो राम जी का जैसा भाव वैसा ही भाव, तो कैसे नहीं होता, हमारे प्राणनाथ क्या चाहते हैं, ये कौशल्या से अधिक आदर करते हैं केकई का, तो मेरा भी काम वही है, कर्तव्य मेरा वही है आदर करना, अब वे माँ बेटा करे सुख करो, हमारा धर्म तो आदर करना का है। ये सीता जी का भाव कितना उत्तम है, कितना ऊंचा है। भरत जी के मन में वहम था, तो चित्रकूट में जब भरत जी गए हैं तो भगवान राम जी को नमस्कार किया और सीता जी के चरण टिका हुआ धूली ले करके अपने सिर पर रख ली, तो वो लगते ही सीता जी आशीर्वाद देती है। तो आशीर्वाद देने से वहम मिट गया भरत जी का कि हमारी माता जी राजी है हमारे पर। अपडर बीता का अपडर, अपने ही डर था, अपने खुद का ही डर, कोई राम जी की तरफ से नहीं था ना सीता जी की तरफ से, वो बीत गया। तो इस तरह का भाव रखो, तो बहन माताओं से ऐसा काम करो। तो सीता जी ने कई के साथ बर्ताव करने में किंचित मात्र भी कमी नहीं रखी। पति व्रता के पति को दुख दे दे उसकी सेवा करना बड़ा कठिन है। स्त्री आप विचार करो स्वयं, सीता जी पति प्रथाओं में श्रेष्ठ पति प्रथा है, परंतु वे उसके केके की तरफ नहीं देखते, देखते भगवान राम जी की तरफ। राम जी छाया हूं मैं, तो राम जी करे जैसे मेरे को करना है। तो आदर विशेष दिया हृदय से, कोई ऊपर से ही नहीं, राम जी हृदय से ही केके माता का आदर करते थे। तो सीता भी हृदय से आदर करती थी, ऐसे भरत जी ऊपर भी आदर करती थी। कौशल्या माता का राम जी के साथ स्नेह हो, जिसे मैं कहना ही क्या है। चित्रकूट में जब सुनैना जी ये सगी मिलती है आपस में, तो वहां कौशल्या कहती है मोही भरत कर सोच, मेरे को भरत की चिंता है, राम जी को चिंता नहीं। ऐसा भाव आप घरों में रखो, अपने देवरानी का लड़का, अपने जेठानी का लड़का वो भरत जी की तरह ही है, तो उनके साथ अपने बेटे से भी अधिक स्नेह करो, बचपन में अधिक स्नेह करो। बच्चा होता है वो स्नेह का पहचान हो जाती है, आपकी परीक्षा हो जाती है। बालक होता है ना, आप समझते हो भोड़ा है, वो भोड़ा नहीं होता है जैसा आप समझते हो वैसा। वो काकी है, बड़ी माँ है, भौजाई भी बड़ी है, तो वो जाता है घुटनों के बल पर, इतना छोटा है अभी पैरों चलना भी नहीं सीखा, 6 महीनों में पैर चलना लग जाते हैं बालक प्राय, तो उतना छोटा उनसे घुटनों के बल चलता है। वो भी देखता है, यूं देख करके निजर से समझते पट कुछ हो जाएगा और प्रेम का होगा तो आशीर्वाद के साथ गोद में आ जाएगा। तो आपकी परीक्षा है कि जेठानी के बालक, देरानी के बालक, ननद के बालक, सासू के बालक, ये तो होते हैं। सासू बड़ी सासू हो, सासू हो काफी, सासू कोई हो, सासू के बालक होते हैं, एक ननद के बालक होते हैं, एक देरानी के बालक, एक जेठानी के। अब जेठानी कई हो, देराना कई हो, सासू कई हो, मैं इतने ही बालक तो एक अपना बालक, तो अपने बालक से भी ज्यादा इन बालकों का आदर करना, जिनमें बालक आप गोदी में आ जाए, ऐसा बर्ताव करना। ये बर्ताव आपका कल्याण करने वाला है और परिवार में प्रेम बढ़ाने वाला है। ऐसे प्रेम बढ़ाओ, जहाँ रहो वहाँ ही अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। जो साथ में जाएगा, संपत्ति धन तो यही रह जाएगा और स्वभाव यहाँ नहीं रहेगा, वो साथ में जाएगा। तो स्वभाव अच्छा बनाओ, तो आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, एक एक का हित करो। प्रेम के बर्ताव में दो चीज खास है, एक तो अपना अभिमान बाधा देता है और एक वस्तुओं का लोभ। वस्तुओं का लोभ होता है, ये बाधा देता है। तो ऐसा लोभ मत रखो, ऐसा रखो कि मेरी वस्तु किस तरह से इनके काम आ जाए। देरानी जेठानी होती है ना, इनमें ये खटपट रहती है। भाई भाई दोनों जाते हैं कहीं रेल में, तो एक भाई ने पैसा देकर अलग भोजन ले लिया, दोनों ही कर लेते हैं, कोई परवाह ही नहीं। परंतु इनके तो ऐसा परवाह है कि जेठानी के घर में एक छोटी लोह की कटोरी भी चली जाए तो नीच ही जाती, वो भागे भी जल्दी लाओ। और वो चली गई, वो देखे कटोरी आ गई, थाली आ गई, तो इसी को भोजन में लाओ काम है, तो इसी की घसी जाए, मेरी थाली नहीं घसी जाए। अब छोटी सी बात में कितना ईश्वर रखता है आपस में, तो मेरे घर ठीक रहे। तो ये स्वार्थ बुद्धि अच्छी नहीं है, इसमें कितना फायदा हुआ बताओ। हाथी पोड़ी से आएगी कोई थाली उनके घर की तो उनको ही भरते हैं जाए लोटराग प्रयास दूसरा दूसरे का ही भर देंगे। नहीं ये रखो सदाई कि लोटे है गिलास है कटोरी है थाली है मेरी ये काम में ले ले उसके इससे उदारता बढ़ती है। थाली लोटा साथ चलेगा नहीं उदारता पीसी रहेगी नहीं ये सब साथ चलेगी और स्वभाव आपके साथ रहेगा वो तो है पूंजी। ये थाली लोटा चीज बस रुपया पूंजी थोड़ी है ये पूंजी आपको बहम है ये यहीं रह जाएगी तो यहाँ रह जाएगी वो धन क्या काम का धन तो हमारे वो काम का जो साथ चले। इस तरह से सासू के साथ नंद के साथ सबके साथ ऐसा बर्ताव करो बुझाई के साथ अपनी जिठाड़ी देरानी सबके साथ ऐसा बर्ताव करो पीर में जाओ तो बुझारी के साथ बर्ताव करो माँ के साथ बर्ताव करो। पीहर में माँ होती है उसका एक स्वभाव आप लोगों का कैसा है छोटे छोटे छोरा छोरी होते हैं तो तब तो छोरे का लाड ज्यादा रखे छोरी का लाड नहीं रखती खाने की चीज है तो वे अच्छी ले भाई दे दे रांड तू खा ले रांड संबोधन आ रांड जा रांड रा खा रांड पी रांड कुंवारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप है। आप ऐसा शब्द बोलो भाई कह दो बेटी कह दो बेटा कह दो प्यार से बोलो तो कैसी अच्छी बात हुए जिसमें ला रान खा रान जा रान नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः संपुट लगता है ऐसे रान का संपुट लगे बातों में कन्या को ऐसी बात मत को कन्या का भी लाड रखो। तो बालकपन में तो देखने का काम पड़ा कि कुर्ता बनाया हुआ छोरी के है तो कई सांधा लगा कर कारी देकर कुर्ता बनाया है और छोरे के बढ़िया गहना भी छोरे की छोरी है नहीं छोरे है उसके कई गले में लटके राखड़ी भी बांध दे गई। कोई पूछे कि माजी दादी से पूछे माजी ये क्यों रखाया है और वो हम कोई पूछ ले कि इनकी रक्षा के लिए छोरी के तो राम जी रक्षा करे। अब राम जी रे स्थानीय पक्षपात है राम जी रे पक्षपात नहीं है छोरी की तो रक्षा करे राम जी और छोरे की थे करो राम जी रक्षा करेगा तो वो तुम्हारे से बढ़िया होगी। पर बात क्या है दुर्भाव आपका तो विषमता करे छोरी को जो चीज दे वो उसको नहीं दे तो छोरी बिचारी कर रही है राम जी मैं भी छोरा होता तो मेरे भी लाड होता वह पश्चाताप करे बिचारी तो ऐसा मत करो भाई का दोनों को लाड करो ठीक तरह से। शेर जी कहते थे कि एक घर में छोरों का ब्याह किया छोरों का ब्याह किया तो बहू आ गई तो बड़े भाई का छोटे भाई का छोर बड़े भाई का छोटा बालक था तो बाप कहीं की छोरी है कहीं की छोरा है तो छोरे का लाड प्यार करे छोरी का लाड प्यार करे उसमें बोले भाई तू मांडो छावेगी आग छावेगी वह बिचारी पूर्व देश की समझते नहीं वह भाई ने कह दियो लाल जी थे आग छाओगा दंड बंडा छाओगा बंडा छावे आग छावे थारो बाप है तो लाड है ये तो भाई का लाड है ये भाई लाड नहीं है समझा आग छावर मांडो छावे क्या अर्थ हो मन तू ब्याह करेगी कि मरेगी आग छाने मतलब आग नीचे गाड़ना था ब्याह मर जा तो आग नीचे गड़ेगी ब्याह होगा तेरा ये लाड है भाई रहा ये भाई हुआ बिचारी पूर्व में समझती मंड सवेगी आग सवेगी लोग भी साहित्य समझे भाषा को शेर जी खा देते भाई तुम आग सवेगी कि मंड सवेगी भाई ये भाई लाड है ये वो भाई ने लाड करने लगी ऐसे ही ऐसा बोल रहे नहीं भाई लाड नहीं है। छोरी बीमार हो जाए दो तीन दिन हो गया छोरी बीमार है जी पति को कह दिया मेरा हो जाओ ठीक है छोरा बीमार हो जाए दो दिन हो जाए मेरे को कहा नहीं दो दिन छोरा बीमार है लाओ लाओ ये छोरी दो चार दिन बीमार है के बिगड़े रांड को छोरी कोई बिगड़ी हो रही उसकी बिगड़े छोरे कहीं बिगड़े बड़ी चिंता से ये पक्षपात मत रखो। कहता है कि हम महिलाओं की उन्नति करते हैं और महिलाओं का सत्यानाश करती है। ये खुद माँ उसी डाकन बन जाती है, माँ गर्भ गिरा देती है, छोरी को मार देती है। महिला संघ बना है, मेरे को आश्चर्य आता है, मैं जानता नहीं हूँ परंतु मैं सुनता हूँ कि महिला संघ है, महिला संघ बना और महिला की डाकन बन गई। महिला संघ में नाम लिखाओ यार, छोरी हुए तो गर्भ गिरा दो, जन्म से पहले ही मार देती हो महिला की, महिला की रक्षा क्या करोगी आप? यार करती हो तो पता नहीं, पर मेरे तो नहीं सुना अभी तक कि महिला संघ में ये प्रस्ताव पास हुआ कि छोरी को गर्भ, छोरी गर्भ न गिरावे, ऐसी बात मैंने सुनी नहीं है। इस वास्ते मन में आता है कि महिला संघ बना, क्या बना? महिला की रक्षा करो। मैं महिला नहीं कहता हूँ, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। गर्भ में बच्ची है वो मातृशक्ति है, माँ है वो, अगर ये माँ बनने वाली है तो मातृशक्ति का नाश करना बड़ा भारी पाप लगता है, मातृशक्ति का नाश मत करो। आज भी मैंने सुना, पहले भी सुना था, थोड़ा थोड़ी गणना हुई जयपुर में और आज वहां के महाराष्ट्र में भी गणना हुई। उस गणना का नतीजा निकला कि जहां तीन छोरी है वहां दो छोरा है, तो दूसरों के ब्याह हो गए, कब ब्याह हो गए नहीं तो वंश नष्ट ही होगा कि नहीं? अब छोरियों को मार गए तो क्या करे, ऊपर से वर्षे नहीं छोरे चले। भगवान की सृष्टि में छोरा छोरी सब बरोबर जन्मते हैं, हिसाब है भगवान का यहाँ पर। अब बचते के खावे के क्या, ये क्या ब्याह कहाँ होगा? अब छोरियों को मारने लगी, गर्भपात हुआ है, बताया एक एक जगह हजारों हजारों स्त्रियां जाती है और गर्भ गिराती है, और गर्भ में सैकड़ों के साथ में एक दो बच्चे का भी गर्भ गिराती है, छोरियों का गर्भ गिराती है ज्यादा। ऐसे माताओं कहलाती हो, खुद तो माता हो और उसको माँ बनने नहीं देते, जन्म से पहले ही मार देती हो, क्या आपका काम है? ये बड़ा नीचा काम है। इस वास्ते कन्या की रक्षा करो। और उसमें एक ने लिखा है कि ऐसे पलती रही 25 वर्ष हो जाएंगे तो चार छोरों से दो छोरी रहेगी, तो आप ही वंश खत्म हो जाएगा, कैसे वंश चलेगा वो? तो वंश नष्ट करने की ये शिवा रिवाज है, मैं कहता हूँ, जिसमें कई लोग नाराज हो जाते हैं कि बस तो भगवान महाराज तो अश्लील बातें करे, अपनी बात करे। आपको होश नहीं होता है आपके छोरे होंगे एक दो, दो आजकल फिर कहते एक होना चाहिए, एक पहले हम दो हमारे दो, अब दो तुम्हारे घर पर रहेगा। फौज पलटन किसकी बनेगी? उसमें आज मनुष्यों में फौज में हिंदू ज्यादा है, जब आपके जो दो ही छोरा होगा घर का काम करेगा तो फौज में भर्ती होगा, आपके घर में रहेगा साधु बनेगा, कोई अच्छा बात भजन ध्यान करने वाला श्रेष्ठ बने, जो कुलम पवित्रम धरणी करता था वसुंधरा पुण्यवती चतेना, जिसका बेटा भगवत भक्त हो गया तो माँ का धन नहीं करता था, माँ का तो कल्याण हो जाता है, केवल बेटा तब तो हो गया तो, और संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है और पृथ्वी पुण्यवती होती है। ऐसा भक्त कौन बनेगा? दो घर का काम ही नहीं करें, दो में एक मर जाएगा तो एक रहेगा। आपके घर में खान है जिसमें आप ऐसा सत्यानाश करती हो, क्या कहें आपको? आप थोड़ी कृपा रखो, मेहरबानी रखो, तो आपके बेटा भी बड़े संत बने, कोई महात्मा बने, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई किसी काम में रहे अच्छी तरह से, फौज में भी जाए कि जिसमें रक्षा करे। और वो ज्यादा संख्या बढ़ रही है, 60-60 लड़का लड़की एक एक मुसलमान के, ऐसा मैंने सुना है, पक्की बात सुनी है। हाँ, चौधरी गांव में गए के मुसलमान घर है,
मुसलमान घर है, छोरा खेलता है, बंदे खुलो का थारे स्कूल खुलड़ी है कि कुछ लड़ा है ने तुम्हारे स्कूल है ने गुरु तो ये तो मारे 5 रुपया है फिर
छोरा खेल है। आने वाले आदमी ने पूछा कि आज सारे कोई उत्सव है, कोई स्कूल है, छोरा इकट्ठा हुआ है, कितना कहने घर रहा है, क्या बात है? कि मारे 5 लुगाया है, मारे ही घर का छोरा है, आ सूल मारे घर रही है, आ 5 लुगाया मारे घर रही है, उत्सव मारे घर रही है, कोई घर उत्सव नहीं है। बीकानेरी बात बताई भाई ने, ये देख जाकर भाई आदर्श हमारे हो रही है, वहां तो उत्सव हो रहा है, जो 5 लुगाया हो रही है, थोड़ा घर सूना हो रहा है, गृहभूषण किम, घर का गहना क्या है? ध्यान दो, आप आपके पहनने के हाथों के गहने होते हैं, कानों के होते हैं, नाक के होते हैं, गले के होते हैं, ऐसे आपके गहने होते हैं कई, पर घर है ना, घर घर में भूषण क्या होता है? बच्चे, एक दो चार बच्चे खेलते रहे, खिलखते रहे, कोई रोता है, कोई घंसता है, कोई लड़ता है, ये घर का गहना है, असली घर की शोभा है। जिस घर में बालक नहीं हो क्या घर शोभा है? घर तो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, साधुओं के स्थान बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, पर घर कहता है कोई? साधुओं का मकान है, मठ ही है, मठ है, राम द्वारा है, ठाकुर द्वारा है, ऐसे कहते हैं, घर नहीं कहते। घर वे है जिनमें बालक खेलते हो, तो हमारे वहां का ये घर, मैं गृह गृह में त्याहुर गृहणी गृह मुच्यते, घर कहलाता है। आप महिलाओं, आपका घर है, अगर आप बच्चों को नहीं पालोगी, जन्म नहीं दोगी, तो कौन देगा? बताओ कौन पालेगा तुझा? इस वास्ते माताओं कृपा करो, 8-10 बालक हो, हम सुने तो हमारा मन राजी हो जाए कि बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो घर बड़ा अच्छा है। नहीं तो गर्भ गिराया तो मारे भाई आनंद गया, पानी भी मत पाना उस घर का, महान हत्या का घर है, पाप का घर है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जोड़े से कहते हम भिक्षा देता है तो उसको कह देते हैं घर में गर्भपात तो नहीं किया है? नहीं कर, हम नहीं लेंगे रोटी, नहीं लेंगे तुम्हारे घर की भाई, गर्भपात किया है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप होता है। अब आज तो सरकार से आज्ञा होगी, सरकार से अगर चले गई नहीं, सरकार यहाँ भी काम नहीं थी, सरकार तो यहाँ भी रक्षा नहीं करती, पर लोग में रक्षा कैसे करेगी? उसे कहने से सत्यानाश क्यों कर रहे हो घर रहे? ये महिला खुद, माताएं खुद करती है, नाश करती है, किसको कहें, किसको दोषण दे? तो आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। तो बहुत सी बात है, मैं अब क्या कर, समय थोड़ा ही है। एक मैं गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक लिखी है, बहुत मांग रही सर, यहाँ मिलती होगा वो पुस्तक, देखो जैसी है। घर में कैसे रहे हैं गृहस्थ में, सासू के साथ, बहू के साथ, ननद के साथ, भौजाई के साथ कैसा बर्ताव करे, बेरन जेठानी के साथ कैसा बर्ताव है, काकी है बड़ी माँ उनके साथ कैसा बर्ताव करे, बड़ी माँ काकी है वो अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करे, भाई भाई कैसा बर्ताव करे, बाप बेटा कैसा बर्ताव करे, बहन भाई कैसा बर्ताव करे, ऐसे बर्ताव की कई बातें उसमें लिखी, और फिर उनसे समझ लो वैसे ही बर्ताव करे, अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे की सेवा। कर्मणीय अधिकार से कर्तव्य कर्म करना, फल न चाहना, ये मूल चीज है। इसकी व्याख्या जितनी करोगे उतनी थोड़ी है, और इससे महाराज घर बड़ा सुंदर होता, बड़ा बढ़िया होगा, फल फलोगे, फूलोगे, ऐसी बात हो जाएगी। कितनी बात है, अच्छी बात है, मौज की बात है। अब दोष हो रहा है आपके, मेरे सास में ऐसा आया, मेरा एक छोरे को तो पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब कृपा करो ये जीता रह जाए, मैं कृपा करूं, कृपा तुम करो तो कई छोरा हो जाए, 10-15-20, अब मेरी कृपा क्या काम करेगी? वहां क्यों ऐसे आपको उनके मांग करनी चाहिए? क्यों आपके मन गिरी गिरी दी है? मंगता पड़ेगी होनी चाहिए, बात घर में खानी है, उसको नष्ट कर रही हो, बड़ा भारी पाप कर रही हो। करोड़ों आदमियों की कमी हो गई है, और यहां तक मैंने सुना है कि ये उद्देश्य ऐसा है भीतर कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई न रहे, गाय कोई न रहे, खत्म कर दो। तो गाय की सुनी नहीं है, गाय की तो क्रिया देखता हूं। हाँ, गाय की बात भी एक मैंने सुनी, राजकीय आदमी आया, गाय चलाने वाला एक आदमी था, नापा सर की बात बताई, तो राजकीय आदमी आया, गोधा था सांड, उसकी सुई लगाकर उसको ही तो पोषो बना दिया। अगर गोधा गाय जन्मे नहीं, हिंदुओं गायों का नाश करना और हिंदुओं का नाश करना, इन नाश के लिए योजना है, 100 वर्षों के भीतर भी नहीं रहेंगी। और विदेशी गाय ला रही, वो योजना करेंगे, विदेशों करें, गाय ला करके सब घर भर में, गांव गांव में, शहरों में फैला दो, जिससे ज्यादा दूध वाली गाय हो जाए। गाय होती बहुत गुस्से वाली, और उसका दूध घी कम होता है, और उसका बैल तो काम का ही नहीं होता है। हमारे गायों के बैल होते हैं अच्छे काम के, दूध होता है, घी आता है, सोम में मूर्ति होती है, वो क्रोधी मूर्ति होती है, खाती बहुत ज्यादा है विदेशी गाय। आप रखते हो ऐसे? मैंने तो सुना है आप लोग तो रखते हो, से देख लो प्रत्यक्ष में, घी इतना नहीं आता है, साग उतना नहीं होता है, और बैल तो साफ सीधा ऊपर, जुआई कहा, जुआ कहा रखे, देख रही जगह नहीं। तो ऐसे उनको कर रहे हैं, उस विदेशी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, विदेशी गाय हमारे घर में हो, राजी हो गया, नाश हो रहा है तुम्हारे घर का। ऐसे ही बहन माताओं कृपा करो, घर में रहते हुए आपसे हम पैदा होते हैं, पलते हैं। ओ संत की बात सुनाई थी ना, हमारे माँ बाप तुम ही हो, हम कहाँ से आए बताओ? अरे तुम्हारी गोदी से आए हैं, कहाँ से आए और ऊपर से बरसे? अरे पालन कहाँ से होते हैं? आपसे ही पालित होते हैं। तो बाबा जी ने बात ऐसी कही, भाई तुम हमारे बेटा बेटी हो, पहले तो माँ बाप तुम हो, पीछे बोल बेटा बेटी भी हो। हमारे दोनों बातें कैसे कि हम पैदा गृहस्थों से होते हैं, पालित गृहस्थों से पालित होते हैं, इस वजह से माँ बाप हुए ये, हम बूढ़े हो जाए तो सेवा कौन करे? ये छोरा छोरी करे हमें सेवा, तो गृहस्थी सेवा करे। तो बेटा बेटी भी तुम ही हो, माँ बाप भी तुम ही हो, हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो।